جزاك الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो इस वाली क्लास के अंदर जो पीर की शाम को होती है उसमें हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ते हैं और कुरान की जिल्द नंबर 3 से, और जो आयत अभी तिलावत की गई वो आयत नंबर 5 है। इसके मआरिफ व मसाइल हमने तर्जुमा और खुलासा तफसीर पढ़ने के बाद शुरू कर दिए थे पिछली क्लास में, तो वो हम आज जारी रखते हैं। पेज नंबर 43 जो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी हुआ वह होगा। तो उसमें जो हजरत फरमाते हैं यानी मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मारूफ मसाइल उन्होंने ही अपनी तहकीक की बुनियाद पर लिखे हैं। तो फरमाते हैं कि जुमले में तय्यबात हलाल होने का बयान है, और एक दूसरी यानी तय्यबात जो है पाक साफ जो चीजें हैं वो हलाल है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, बात को खोला है इसके बारे में इस आयत में। और एक दूसरी आयत में इरशाद है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। कुरान मजीद ही की एक दूसरी आयत में फरमाया कि या जिसका तर्जुमा है कि हलाल करता है उनके लिए तय्यिबात और हराम करता है उन पर खबाइस। ठीक है, अल्लाह युहिल्लु वो हराम करता है, ठीक है अल्लाह ताला। तो इसमें तय्यिबात के या नबी अलैहिस्सलाम, इस आयत की आगे पीछे जो है वो मैं नहीं चेक कर सका कि किसकी तरफ नस्बत की जा रही है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ। कोई हाफिज साहब जो है वो बता सकते हैं तो बता दें। तो हलाल करता है उनके लिए तो ये बात और हराम करता है उन पर खबाइस। इसमें तो ये बात के बिलमुकाबिल खबाइस लाकर इन दोनों लफ्जों की हकीकत वाजह कर दी है। तो सूरह मायदा की इस वाली आयत के अंदर सिर्फ तो ये बात का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो इसके ऑपोजिट क्या चीज है उसका सराहतन तज़किरा नहीं किया, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन नहीं किया कि इसके ऑपोजिट क्या चीज होती है। तो उस आयत के अंदर इसकी तफसीर मजीद मिल जाती है, क्योंकि कुरान मजीद सबसे पहले तो उसकी तफसीर कुरान मजीद ही से की जाती है, किसी और मुकाम पर कुरान मजीद से कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर की जाती है। तो इस आयत से इसकी तफसीर ये हो गई कि तय्यिबात के बाद दूसरी जो चीज इसके ऑपोजिट है वो क्या है, खबाइस। तो लुगत में तय्यिबात साफ, अच्छा अब आगे फरमाते हैं कि भाई जो डिक्शनरी होती है ना, यानी जो उस जुबान को बोलने वालों के दरमियान जो राइज मफहूम होता है अल्फाज का, तो उसको जो है वो बाद में जब किताबें कंपाइल हुई तो एक किताब के अंदर उन मफहूमात को लिख दिया गया, उसका नाम लुगत रख दिया गया, ठीक है, या अंग्रेजी में उसको डिक्शनरी कह दिया गया, ठीक है। वरना लुगत का लफ्ज जो है वो जुबान के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लुगत में तो ये बात साफ सुथरी और मरगूब चीजों को कहा जाता है, और खबाइस उसके बिलमुकाबिल गंदी और गंदी और काबिल नफरत चीजों के लिए बोला जाता है। इसलिए आयत के इस जुमले ने ये बतला दिया कि जितनी चीजें साफ सुथरी मुफीद और पाकीजा हैं वो इंसान के लिए हलाल की गई, और जो गंदी काबिल नफरत और मुगिर यानी जरर पहुंचाने वाली वो हराम की गई है। वजह यह है कि इंसान दूसरे जानवरों की तरह नहीं है। अच्छा अब इसके आगे जो है वजह हिकमत वगैरह सब पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत अहम नुक्ता है और ये नुक्ता अगले पेज में भी दोबारा से भी आएगा इंशाल्लाह, कि ये जो जुमला है ना, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है किसी नए शख्स के लिए जो कि दीनी उमूर और दीनी मामलात से ज्यादा वाकिफ नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, क्योंकि मुसलमान भी आजकल ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही अपने दीन के बारे में नहीं पता। तो इस जुमले से जहन में ये बात आ सकती है या शैतान डाल सकता है कि भाई क्या मतलब कि वो चीजें हलाल की गई हैं जो पाकीजा हैं। तो इससे ऐसा भी लगता है कि जैसे कि मुसलमान के इंसानों का एक कंसोर्शियम बैठा, ठीक है ना, एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने जो है वो दुनिया में देखा कि कौन सी चीजें पाकीजा हैं तो उनको हलाल करार दे दिया, और जिन चीजों को उस कमेटी वालों ने गंदी पाया उनके हिसाब से वो गंदी चीजें थी उनको हराम करार दे दिया। ठीक है, तो क्या इस तरीके से हलाल और हराम की तारीफ की गई है हमारे दीन इस्लाम के अंदर? नहीं, हरगिज नहीं, इस तरह से नहीं की गई है, बल्कि उसूल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्टली बताया है, बल्कि कुछ चीजों का स्पेसिफिकली नाम लेकर के भी अल्लाह ने खुद ही बताया है। ठीक है ना, फर्क सिर्फ ये है कि अल्लाह ने खुद ही बताया का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह की आवाज आई थी ऊपर से, या हर इंसान के पास ऊपर से कोई पर्चा फ्लोट करता हुआ आया, उसके हाथ में आ गया कि ये अल्लाह ने बताया है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम तक ये डेफिनेशंस पहुंचाई और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इंसानों को बताया। ठीक है, तो ये किसी कंसोर्शियम या किसी जो है वो ये इज्तिहादी मसला नहीं है कि पाकीजा जो है वो हलाल है और नापाक जो है वो हराम है, बल्कि ये कुरान मजीद का स्पेसिफिक हुक्म है, जैसे कि इस आयत में हम पढ़ रहे हैं। तो हाफिज साहब ने माशाल्लाह पूरी इतनी लंबी वाली आयत भी लिख दी, अल्लज़ीना यब्तगू यत्तबिउन अर्रसूल नबीयल उम्मीय अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व यहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व यहर्रमु अलैहिमुल खबाइस। ठीक है, तो जज़ाकुमुल्लाह, यही वो आयत है जिसके अंदर से हजरत ने यहाँ पे, तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया है, जिसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हराम और हलाल का जो है वो डिक्लेरेशन करी है, लेकिन स्पेसिफिकली इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया है इस बात को अल्लाह ताला ने। तो अब आगे भी काफी सारी है। अच्छा, तो इसीलिए कुरान करीम, अच्छा एक मिनट, तो ये बात हो गई कि भाई किसी कंसोर्शियम ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि खुद से डिसाइड किया क्या पाकीजा है और उसको हलाल करार दिया और क्या गंदा है उसको हराम करार दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, वजह ये है, अब वजह हिकमत, कि इंसान दूसरे जानवरों की तरह नहीं है कि इसका मकसद जिंदगी दुनिया में खाने पीने सोने जागने और जीने मरने तक महदूद हो। ठीक है, इंसान और दीगर हैवानों में इतना फर्क है कि मकसद जिंदगी उनका खाना पीना सोना जागना और जीना मरना, और इंसान का जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश किया जाना, बंदगी का इम्तिहान लिया जाना, ये है इंसान का मकसद जिंदगी बंदगी। तो उसको कुदरत ने यानी इंसान को कुदरत ने मखदूमे कायनात, मखदूम किसको कहते हैं, जिसकी खिदमत की जाए, ठीक है, जिसकी खिदमत की जाए। तो इंसान क्या है, कायनात का मखदूम है, पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की खिदमत में लगाया हुआ है। तो कुदरत ने मखदूमे कायनात किसी खास मकसद से बनाया है, यानी इतना बड़ा जो अशरफुल मखलूकात का जो मर्तबा दिया है इंसान को, हम कहते हैं ना अपनी स्लैंग में, फ्री में नहीं दे दिया है, खामखा में उठा के नहीं दे दिया है, बल्कि देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग, नथिंग इज फॉर फ्री, है ना, इतना बड़ा आपको मर्तबा मिल गया फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर इट, नहीं, नथिंग इज फॉर फ्री, हर चीज की एक प्राइस होती है। तो वो उसकी प्राइस क्या है कि वो मकसद क्या है, आला पाकीजा अखलाक के बगैर ये मकसद हासिल नहीं होता, यानी व्हाट इज डिमांडेड फ्रॉम यू, आपसे किस चीज की डिमांड की गई है, आला और पाकीजा अखलाक। ठीक है, तो अब इसका जो है वो दीन इस्लाम से क्या ताल्लुक, अखलाक तो आजकल ईसाइयों के बड़े अच्छे होते हैं, गोरों के अच्छे होते हैं, अमरीकियों के, ऑस्ट्रेलियंस के, यूरोपियंस के और सिंगापुरियंस के सबसे अच्छे होते हैं, और वेस्टर्न यूरोपियंस के और से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, और किसी के भी अच्छे हो सकते हैं, दीन इस्लाम कैसे क्या ताल्लुक, ठीक है, दीन इस्लाम का फिर अखलाक से क्या खास बात। अखलाक तो भाई वो जो अखलाक होते हैं ना, वो अखलाक जो होते हैं लिमिटेड अखलाक होते हैं। एक तो ज्यादातर उनमें से खाली जाहिरी तौर पर होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ अपेरेंट आउटवर्ड। जबकि जब दीन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकीज़ा अखलाक की बात की जाती है ना, तो इससे क्या मुराद होते हैं, इससे क्या चीज मुराद होती है, अगर आपसे पूछूं तो ज्यादा अच्छा नहीं। जब दीन इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अखलाक की बात होती है तो इससे क्या चीज मुराद होती है? स्वीट टॉक, स्वीट टॉक मुराद होती है इससे। शुगर कोटेड वर्ड्स मुराद होती है इससे, राइट? या कुछ लोग जो हैं वो सर को झुका करके टेढ़े करके खड़े होते हैं, जैसे रुकू की हालत में चल रहे हैं या रुकू की हालत में जो है वो किसी से बात करते हैं, ये मुराद होती है दीन इस्लाम के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अखलाक से मुराद दीन इस्लाम के अंदर है, जैसे कि आप सब ने जवाब दिए माशाल्लाह सही, के टू गिव एवरी वन देयर राइट्स, हुकूक की अदायगी, राइट, हुकूक अदा करना, राइट्स जो है वो फुलफिल करना, सबके राइट्स फुलफिल करना, ये है अच्छे अखलाक दीन इस्लाम के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर स्वीट टॉक शामिल है, बट इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट ऑल ऑफ द अखलाक। बस स्वीट टॉक कर ली किसी के साथ, हाउ डू यू डू एंड हाउ इज द वेदर एंड कैन आई हेल्प यू, इस तरह के कोई अल्फाज कह दिए, या थोड़ा बहुत जो है वो हेल्प भी कर दी, बस खलास अखलाक पूरे हो गए? नहीं, हुकूक, हुकूक की अदायगी, ठीक है, अल्लाह से शुरू होते हैं, अल्लाह का पहले और फिर नबी अलैहिस्सलाम, फिर ऑल द वे डाउन टू इवन जानवरों के हुकूक, राइट, इवन जो है वो यानी कीड़े मकोड़ों के हुकूक भी अगर किए जा सकते हैं तो उनके भी कर देते, ऑल द वे फ्रॉम अल्लाह डाउन टू इतनी छोटी छोटी चीजों से भी इनके हुकूक अदा करना। इसीलिए बद अशलाक इंसान दर हकीकत इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं, ठीक है, बद अशलाक इंसान जो कि हुकूक अदा नहीं करता तो वो तो यानी ही इज नॉट पेइंग द प्राइस फॉर हिज बीइंग डिक्लेयर्ड और बीइंग पुट ऑन दैट पोजिशन ऑफ अशरफुल मखलूकात, कि सारी कायनात को उसका मखदूम बनाया गया, ही डज नॉट डिजर्व टू बी मखदूम ना, ठीक है। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला उससे नाराज होते हैं, फिर वो नाराजगी जब बढ़ती है उसकी अपनी हरकतों की वजह से तो फिर उसके ऊपर अजाब आता है, फिर उसको मखदूम कायनात बनाने की बजाय अल्लाह ताला कायनात को उसका मखदूम बना देते हैं, राइट, उसको खादिम बना देते हैं और कायनात को मखदूम बना देते हैं। जैसा कि इस वक्त हमारा हाल है कि हम मखदूम नहीं बने हुए बल्कि हम खादिम बने हुए हैं, सबकी खिदमत करते हैं, राइट, हम जो है वो गैर मुस्लिमों की भी खिदमत करते हैं, हम जो है वो जानवरों की भी खिदमत करते हैं, हम जो है वो पौधों की भी खिदमत करते हैं, और हम जो है वो हर हर किस्म की खिदमत करते हैं, कोई हमारी खिदमत नहीं करता, हम दूसरों की खिदमत करते हैं। बहैसियत मिन हैसुल कौम, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन मिन हैसुल कौम, तो मखदूम होने की तो प्राइस थी ना भाई, आपने प्राइस तो पे करी नहीं है, फ्री में आप चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए, फ्री में आपको सर्विस मिल जाए, फ्री में आपको इज्जत मिल जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो बद अखलाक इंसान यानी ऐसा मुसलमान जो कि हुकूक अदा ना करता हो, जो कि हुकूक अदा ना करता हो, ही डज नॉट डिजर्व टू बी अशरफुल मखलूकात एंड मखदूम कायनात, ठीक है। खुद दुनिया को अपना इला बना लिया है हमने, ठीक है ना, अब दुनिया की परस्तिश कर रहे हैं और अल्लाह की परस्तिश जिसकी करनी थी वो की नहीं, करनी नहीं है। इसीलिए कुरान करीम ने ऐसे लोगों के मुतालिक फरमाया, बल हुम अवल, दे आर द वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन, ये अशरफुल मखलूकात नहीं है। क्या मतलब, क्या उनकी आंखें खत्म हो जाती हैं, उनके हाथ टूट जाते हैं, इस वजह से वो बलहुम अदल हो जाते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक उनकी ऐसी हैसियत बन जाती है कि वो अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक बन जाते हैं, ठीक है, बदतरीन मखलूक बन जाते हैं जो कि हुकूक अदा नहीं करते, जो कि बीवी का हक अदा नहीं करते, या वो बीवियां जो कि शौहर का हक अदा नहीं करती, वो औलाद जो कि माँ बाप का हक अदा नहीं करती, और वो उम्मत जो कि रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं करती, और वो बंदा जो कि अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं करता, बल हुम अव्वल, राइट, सबसे बदतरीन मखलूक वो हो जाता है, ठीक है, यानी वो चौपायों से भी ज्यादा गुमराह है। इसी वजह से जहन्नुम में ऐसे इंसान जो हैं वो चौपायों के साथ नहीं डाले जाएंगे, किसके साथ डाले जाएंगे, वो पत्थरों के साथ डाले जाएंगे, जमादात के साथ डाले जाएंगे, जो कि मखलूकात में सबसे ज्यादा कमतर चीज अल्लाह ताला ने बनाई, अल्लाह ताला उसको इंसान के साथ जमा कर देंगे जहन्नुम, और दोनों जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे, फ्यूल बन जाएंगे जहन्नुम। ठीक है, झूठ बोलते हैं, किसका हक मारते हैं? अपने परवरदिगार का हक मारते हैं, हक नहीं अदा कर रहे होते अपने परवरदिगार का जब झूठ बोल रहे होता है। ठीक है ना, तो ऐसे इंसान को जो परवरदिगार का हक अदा नहीं कर रहा, वो और किसी का क्या हक अदा कर, तो जहन्नुम में पत्थरों के साथ उसको इकट्ठा कर दिया जाएगा। और जब इंसान की इंसानियत का मदार, डिपेंडेंसी इस्लाह अखलाक पर हो, तो जरूरी है कि जितनी चीजें इंसानी अखलाक को गंदा और खराब करने वाली हैं, जो अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने दुनिया को आजमाइश का बनाया है ना, दुनिया पे अच्छा करने वाली चीजें भी बनाई, बुरी करने वाली चीजें भी बनाई। अगर खाली अच्छी वाली चीजें बनाते तो फिर आजमाइश कैसी, राइट? अगर आप इम्तिहान के अंदर बैठे, एग्जाम के अंदर बैठे, और वहां पे सारे आपको ऐसे सवाल दे दिए जाएं जो कि सारे बच्चे बच्चों को पता है, ठीक है, और फिर कहा जाए अच्छा जी तुम जो है वो सवाल का जवाब लिख दो और तुम्हें जो है वो हम गोल्ड मेडल दे देंगे, तो फिर इम्तिहान तो नहीं हुआ ना, ये तो मजाक हुआ। फिर इम्तिहान तो उस वक्त होगा ना जब चेक करना होगा कि हाँ भाई किसने जो है वो क्लासेस अटेंड करी थी, किसने तवज्जो से बात सुनी थी, किसने जो है वो बात को याद रखा था, किसने जो है वो इम्तिहान के लिए तैयारी करी थी। खाली वही पास होगा, हर बंदा तो नहीं पास हो सकता उसके अंदर, इसी को तो इम्तिहान कहते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने दोनों ऑप्शन रखे हैं ना, कि गंदा और खराब करने वाली चीजें भी हैं, उनसे उसका मुकम्मल परहेज कराया जाए, यानी उसको बता दिया जाए कि भाई ये गंदी चीज है, इख्तियार उसके पास है कि वो परहेज करता है या नहीं करता, लेकिन बता देना ये अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया, रसूलों के जरिए से बताया। इंसान के अखलाक पर उसके गिर्दो पेश की चीजों और उसकी सोसाइटी का असर पड़ना बदीही तौर पर हर शख्स जानता है। अजीब बात है, जानता भी है लेकिन मानता नहीं है, जब दिल चाहता है तो नहीं मानता। जैसे हम कहते हैं ना, अपने बच्चों को हम गंदे माहौल में भेजते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा जो है ना वो मेरा बच्चा है, शैतान की मजाल नहीं कि मेरे बच्चे को गुमराह करे, क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना, मतलब आपको तो गुमराह कर दिया उसने, आपके बच्चे को गुमराह नहीं करेगा है, क्यों नहीं करेगा भाई? क्योंकि असल में हमारी हकीकत यह है कि हम शैतान को मानते ही नहीं है, ठीक है ना, हमें शैतान के बारे में अलिफ का बे भी नहीं पता, हमें तो अपने परवरदिगार के बारे में कुछ नहीं पता, शैतान के बारे में क्या पता होगा, क्योंकि ये सब तो हमें कुरान से पता चलेगा शैतान क्या चीज होता है भाई, कुरान को तो हमने लिफ्ट नहीं करानी, ठीक है, तो इस वजह से जाहिर के जाहिर रहते हैं। तो हम भेजते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होता उसके ऊपर, कोई असर वसर कुछ नहीं होगा, है ना, लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है वो जॉर्जिया भेज देते हैं, तो किसी को उठा के कहीं भेज देते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं कि कुछ नहीं होता, मेरी बेटी है ना वो अपने आप की हिफाजत करना जानती है, ठीक है ना, हाँ उसके लिए तो शैतान छुट्टी पे चला जाता है ना, इस वजह से वो अपनी हिफाजत कर लेगी। तो ये हजरत ने भी जो है ना वो, हाँ शैतान मुसलसल राबते में है, इबादत भी जुमे को भी हुई थी, शैतान तो मुसलसल राबते में है ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास, जिन्नों की शक्ल में भी है और इंसानों की शक्ल में भी शैतान है, मुसलसल हमारे साथ राबते में, हम अल्लाह वालों के साथ राबते में नहीं रहना चाहते, हम नेकों के साथ नेक माहौल में राबते में नहीं रहना चाहते, तो क्या हमारा हमारी हमारी फॉल्ट है भाई? शैतान तो हमसे पूछता नहीं है कि हाँ भाई आपकी इजाजत है मैं आपसे रابطے में रह सकता हूँ, इजाजत है तो रहूंगा, वरना वरना नहीं रहूंगा मैं आपसे रابطے में। शैतान को तो अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, और शैतान अपना काम 100% करता है, मुसलसल अपना काम करता है, तो हमारे साथ भी करता है, हमारी औलाद के साथ भी करता है, और दूसरों के साथ भी करता है, सिर्फ दूसरों के साथ नहीं करता। तो ये तो बड़ी ही बात है, यानी हजरत ने क्या लिखा कि भाई दिस इज समथिंग दैट यू डोंट इवन हैव टू प्रूव, यू डोंट इवन हैव टू प्रूव दिस, ये बदी ही है, सेल्फ प्रूवन है, ये अपेरेंट है, ऑब्वियस है, राइट? कि असर पड़ता है इंसान के ऊपर, हम देखते हैं हमारे ऊपर असर पड़ता है, राइट? अच्छे माहौल का भी असर पड़ता है, बुरे माहौल का भी असर पड़ता है, हर तरह से पड़ता है, ठीक है? तो कहते हैं इंसान के अखलाक पर उसके गिर्दो पेश की चीजों और उसकी सोसाइटी का असर पड़ना बदीही तौर पर हर शख्स जानता है, इसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, बदीही का ये मतलब होता है। और ये जाहिर है कि जब गिर्दो पेश की चीजों से इंसानी अखलाक मुतासर होते हैं, यानी अपने सराउंडिंग से इंसानी अखलाक मुतासर होते हैं, तो जो चीजें इंसान के बदन का जुज बनती हैं, राइट, कंक्लूड कर रहे हैं उससे, इसके ऊपर कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे रहे, लेकिन कंक्लूड कर रहे हैं कि जो आपके बदन का जुज्व यानी जो खाना आप खा रहे हैं उसी से आपके टिश्यूज बनते हैं, उसी से आपका ब्लड बनता है, इसी से आपके जो है वो कार्टिलेजेस बनते हैं, इसी से आपकी बोन्स बनती है ना। ये तो साइंस ने तो आप तो आप खुद करके भी दिखा दिया थ्रू, यानी ऑब्जर्व करवा के भी दिखा दिया, बनती है इस तरीके से सेल्स बनते हैं। तो उनसे अखलाक किस कदर मुतासर होंगे, यानी बैरूनी असर ज्यादा होगा कि अंदरूनी असर ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, ये भी बड़ी ही बात है कि अंदरूनी असर ज्यादा होगा, इसलिए खाने पीने की सारी चीजों में इसकी एहतियात लाजमी हुई। चोरी, डाका, रिश्वत, सूद, कमार वगैरह की हराम आमदनी जिसके बदन का जुज बनेगी, वो लाजमी तौर पर उसको इंसानियत से दूर और शैतानियत से करीब कर देगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, डाकू डाका डालना, ये इससे ये तो नहीं होता कि कोई डाका डाल के सूअर का गोश्त ला करके खाएगा तो इस वजह से उसके ऊपर जो है वो बुरा असर पड़ेगा। डाका डाल करके तो फिर वो मुर्गा चरगा लेकर के आएगा और हलाल मुर्गा चरगा खरीद करके लाके खाएगा, है ना, हलाल जगह से जो है बिरयानी खरीद के लाएगा उसको खाएगा, लेकिन आमदनी डाके की होगी। ठीक है, तो फिर क्यों हलाल मुर्गा खाने से जो है वो क्यों शैतानियत आती है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म कि डाका मत डालो, किसी दूसरे के माल पे कब्जा मत करो उसकी इजाजत के बगैर, अल्लाह का हुक्म टूटा, इससे जो है वो हलाल मुर्गा भी जो है वो शैतानियत पैदा करने का सबब बनेगा। राइट, हत्ता के मुर्गा तो छोड़ दें, हलाल चावल जो के भी आगे भी हम बहुत तफसीर है इसके अंदर कि चावल और गंदम और ये सब जो है इसको तो जबा करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि दूसरे के माल पर कब्जा डालना है तो अल्लाह का हुक्म टूटा। अब अल्लाह ने जज़ाकुमुल्लाह, बड़ी अच्छी बात आपने लिखी कि ये जो है खाने की जो चीज है ये भूख मिटाने का सबब है, भूख मिटाने का सबब है। क्या वाकई इसने भूख मिटानी है कि नहीं मिटानी, ये आप डॉक्टरों से पूछ लें, अगर कोई डॉक्टर हमारी क्लास में, खाना खाते हैं लेकिन भूख नहीं मिटती, क्यों नहीं मिटती भाई, क्योंकि उसके अंदर भूख मिटाने का असर अल्लाह ताला ने निकाल लिया, अब उसका उसकी बॉडी जो होती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। उसी तरीके से ये चीजें कंटेनर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें करने असबाब कंटेनर्स हैं, इनमें असर जो है वो अल्लाह डालता है, ये तो बुनियादी ईमान है ना हमारा, अल्लाह जो है वो कंटेनर के अंदर असर डालता है, अच्छा असर या बुरा असर, अल्लाह का हुक्म पूरा किया जाता है, अल्लाह ताला उसके अंदर अच्छा असर डाल देता है, और जहां पर अल्लाह का हुक्म तोड़ा जाता है, यानी अल्लाह के बिलमुकाबिल कौन है, नफ्स, इंसान का अपना नफ्स, शैतान नहीं, इंसान का अपना नफ्स, ये अल्लाह के बिलमुकाबिल खड़ा है, जहां नफ्स का हुक्म मान करके और अल्लाह का हुक्म तोड़ करके काम किया जाता है, वही चीज जो कि हलाल अदरवाइज थी वही जो है वो शैतानियत पैदा करने का सबब बन जाता है। ठीक है, इसीलिए कुरान करीम का इरशाद है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि अमल सालिह के साथ अकल हलाल का हुक्म दिया गया, क्योंकि अकल हलाल के बगैर, अकल मतलब खाना, अकली वर्ब खाना, कि हलाल खाए बगैर अमल सालिह मुतसव्वर नहीं है, यानी उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता हलाल खाए बगैर अमल सालिह। ठीक है, तो हराम खा करके अमल सालिह करना फिर ये बहुत मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। एक अमल सालिह जो है वो हराम खा करके भी किया जा सकता है, जल्दी से बताएं कौन सा, एक अमल सालिह हराम खा करके भी किया जा सकता है वो कौन सा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया, तौबा। ठीक है ना, जिसमें के दुआ इंक्लूडेड होती है, इसमें दुआ इंक्लूड, तो दुआ का जवाब भी सही होता और तौबा का जवाब भी सही है, ये एक अमल है, हराम खाने वाला भी ये कर सकता है। जी अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला की रहमत और करम, तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया हराम खाने वाले के लिए। ठीक है, अल्लाह का एहसान है ना हमारे ऊपर, वरना तो फिर क्या करते, हराम खाते और तौबा नहीं करते तो फिर क्या होता, तौबा नहीं कर सकते तो फिर क्या होता। तो अकले हलाल के बगैर अमल सालेह मुतसव्वुर, यानी नमाज, रोजा, हज, जकात और इस तरह के जो है वो अच्छी अच्छी तिलावतें और अच्छे अच्छे जो है वो दूसरे अमाल, ये मुतसव्वुर नहीं, इनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बिलखुसूस गोश्त जो इंसान के बदन का जुज्व अहम बनता है, इसमें इसकी एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा गोश्त उसकी गिजा में दाखिल ना हो जो उसके अखलाक को खराब करे। इसी तरह वो गोश्त जो जिस्मानी तौर पर इंसान के लिए मुजर है कि बीमारी और हलाकत के जरासीम इसमें है, जैसे गोश्त, आप गोश्त सड़ गया, ठीक है ना, फ्रिज में नहीं रखना भूल गए, या फ्रिज में रखा था बहुत दिन हो गया सड़ गया, बिलाखिर उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया, ठीक है, तो वो सड़ा हुआ गोश्त भी जो है वो शरीयत ने खबाइस में ही उसको इंक्लूड किया ना, तो वो यकीनी तौर पर अच्छा, वो जो वो गोश्त जो जिस्मानी तौर पर इंसान के लिए मुजर है कि बीमारी और हलाकत के जरासीम उसमें है, जिस्मानी तौर पर बैक्टीरिया वगैरह, ठीक, इससे इंसान के परहेज का जरूरी होना तो सभी जानते हैं, यानी इवन नॉन मुस्लिम्स डिनायर्स ऑफ द कुरान इवन दे एक्सेप्ट द फैक्ट, यानी जिसम को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितनी चीजें शरीयत ने खबाइस करार दी है, यानी कुरान और सुन्नत ने जो चीजें खबाइस करार दी है, वो यकीनी तौर पर इंसान के जिस्म या रूह या दोनों को खराब करने वाली और इंसानी जान या अखलाक को तबाह करने वाली है, इसलिए उनको हराम कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा क्या ईमान है कि शरीयत ने जिन चीजों को हराम करा दिया ना, ये सिर्फ रूह के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि लिए जिस्म के लिए भी नुकसानदेह। अब आपके बड़े बड़े साइंसदान उसको उसका इनकार करें या इकरार करें, हम ये कहेंगे कि अगर वो इसका इकरार कर रहे हैं गुड फॉर देम, ठीक है ना, लेकिन अगर इसका इनकार कर रहे हैं कि नहीं तुमने तुम्हारी शरीयत जिस चीज को हराम कहती है हम तो नहीं, हमारी साइंस तो कहती है कि नहीं वो तो कोई हार्मफुल नहीं है, हम कहेंगे कि तुम्हारी साइंस जो है ना वो अभी वहां तक पहुंची नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारी साइंस तो हर वक्त ही जो है वो प्रोग्रेस करती रहती है, हर वक्त ही जो है वो बल्कि पुरानी चीजों को अच्छा कहना शुरू कर देती है, नई चीजों को बुरा कहना शुरू कर देती है, ऐसी साइंस का क्या एतबार भाई, अल्लाह का जो बताया हुआ इल्म है वो उसके ऊपर हम ट्रस्ट करें कि तुम्हारी साइंस के ऊपर ट्रस्ट करें, हम तो नहीं करते तुम्हारी साइंस पर ट्रस्ट, ठीक है ना, कर लो जो करना है, नाराज होना है नाराज हो जाओ, ठीक है ना, हम नहीं करते उसके ऊपर ट्रस्ट, हम अल्लाह के बात के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो कि नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम तक पहुंची, हमें अपना ईमान अजीज है भाई, ठीक है ना, ईमान अजीज है, हम काफिर को थोड़ी होना चाहते हैं साइंस पर ट्रस्ट करके अल्लाह के हुक्म को डिस्ट्रस्ट कर दें, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसे किसी अमल करने से, तो इंसानी जान या अखलाक को वो तबाह करने वाली है, दोनों चीजों को तबाह करने वाली, इसलिए उनको हराम करार दे दिया गया है। इसके बिलमुकाबिल तैयबात से इंसान के जिस्म रूह की तरबियत और अखलाक फाजिलह का नशो नुमा होता है, उनको हलाल करार दिया गया है। गर्ज कुरान पाक के जुमला अहिल्लकुमुत्तैयबात ने हिल्लत व हुरमत का फलसफा भी बतला दिया और उसूल भी बतला दिया, यानी फिलोसफी जो इसके पीछे थी वो भी आप समझ सकते हैं इससे जो समझा दिया हजरत ने, और उसूल प्रिंसिपल भी बता दिया। अब ये बात कि कौन सी चीजें तैयबात यानी साफ सुथरी मुफीद और मरगूब है और कौन सी खबाइस यानी गंदी मुजर और काबिल नफरत है, इसका असल फैसला तबाइ सलीमा की रगबत व नफरत पर है। तबाइ सलीमा किस चीज को कहते हैं, ये क्या बला है, तबाइ सलीमा तो तबाइ का जो लफ्ज है ये तबीयत की जमा है, और सलीम ये एक अंकल का नाम होता है नहीं, ठीक है, तबाइ सलीमा उस तबीयत को जो के फितरत पर कायम हो, यानी जैसा अल्लाह ने उसको फितरत पे बनाया था वो उसी फितरत पे ही चल रही, उससे हटी ना, ठीक है, ऐसी तबीयत को तबीयत सलीमा कहते हैं। तो ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए जो है वो और कोई लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, ये लफ्ज खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इवन अगर कोई काफिर भी है, यानी नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाला, नबी अलैहिस्सलाम का अल्लाह का नबी ना मानने वाला, लेकिन उसकी तबीयत जो है वो इन मुआमलात के अंदर फितरत से हटी हुई नहीं, ठीक है, फितरत से हटी हुई अभी इसकी तबीयत नहीं है कि वो गंदी चीजों को पसंद करना शुरू हो जाए और साफ चीजों को जो है वो गंदा कहना शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को देखते हैं जो कि ऐसे फितरत पर अभी भी मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं, अगरचे कि मुश्किल है इस दौर के अंदर ऐसा मिलना, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे आपको ऐसे कुछ लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, बुनियादी फितरत तो उनकी मस हो हुई है, क्या बुनियादी फितरत, कि एक अल्लाह को मान, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, ये बिल्कुल बुनियादी फितरत है, ठीक है, अल्लाह का यानी अल्लाह का इनकार ना कर, ठीक है, यह है बुनियादी फिक्र जिस पे अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया, चाहे वो जहां भी रहता हो, चाहे वो जिस दीन से भी बाद में जाकर के जुड़ जाए, लेकिन जो इसके ऊपर की यानी पेरिफरी लेवल की फितरत फितरत है ना, जैसे किसी को मार रहा है कोई, तो अब उसको देख करके तबीयत बोझल हो जाती है, परेशान हो जाती है, और उसकी पिटाई हो रही है, उसके उसको तकलीफ हो रही है, अजियत हो रही है, क्या काफिर की नहीं होती? काफिर की भी होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि अल्लाह ने फितरत में डाला है कि किसी के ऊपर तकलीफ का तुम देखो तो उसके ऊपर खुश ना हो, ये फितरत में है इंसान की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर, और आजकल शायद बहुत बड़ी तादाद इनकी हो, जो बढ़ती जा रही है तादाद, जो कि लोगों को अजियत में देख करके खुश हो रहे हैं, राइट। खास तौर पर वो जो बनी इसराइल वाला मुल्क है, उसके बारे में तो खबरें भी आती रहती हैं, अजियत में देख करके जो खुश हो रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, फितरत मस हो गए, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अल्लाह ताला ने फितरत में डाली है इंसान के। तो जिनकी ऐसी फितरत मस नहीं होती है ना, तो हजरत ने यहाँ पे ये लिखा है, अगेन दिस सेंटेंस कैन बी अ लिटिल मिसलीड, ये सेंटेंस भी अ लिटिल मिसलीडिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत मिसलीडिंग हो सकता है, तो उसको भी हमने एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह। तो कहते हैं इसका असल फैसला तबायर सलीमा की रगबत व नफरत पर है। यही वजह है कि जिन जानवरों को इस्लाम ने हराम करार दिया है, इस्लाम किसी अंगल का नाम नहीं है, ना किसी आंटी का नाम है, ठीक है, बल्कि ये किसका नाम है? ये अल्लाह के बनाए हुए उसूलों का नाम है। क्या वो वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिससे कि सबको ये बात समझ में आ जाए? है अल्लाह के बनाए हुए उसूलों का नाम है, तो उसूल का लफ्ज तो बड़ा आजकल समझ में मुश्किल से आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम मिसाल ये देते हैं कि जैसे बच्चे जो है ना, वो आजकल तो बच्चे वीडियो गेम, राइट, या जो है वो फोन के ऊपर, अम्मा अब्बा उनको टैब पकड़ा देते हैं, वीडियो गेम पकड़ा देते हैं, फोन पकड़ा देते हैं, वो स्क्रीन के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग अभी भी जो है वो टैब्स और वीडियो गेम्स और स्क्रीन से जो है अपने बच्चों को दूर रखते हैं। तो अब ऐसे बच्चे जो है ना, अल्लाह ताला फिर उनको इनाम देते हैं, उनकी क्रिएटिव सलाहियतों को जो है ना फिर बढ़ा देते हैं, वरना वीडियो गेम्स तो बिल्कुल मार देते हैं उनकी क्रिएटिव सलाहियतों, ठीक है ना। तो जो नहीं खेलते इस तरह की चीजें, तो उनकी क्रिएटिव सलाहियतें बढ़ती हैं। अब वो बच्चे क्या करते हैं, वो अपना एक गेम बना लेते हैं, अपना एक गेम बना लेते हैं कि यार हम चलो अब यहाँ पे कुछ और खेलने के लिए, कोई फुटबॉल नहीं है, कोई हॉकी नहीं है, कोई और बॉल नहीं है, हम क्रिकेट का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो अब हम क्या करें, चलो लेट्स लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है ना। हम कजन जो है वो छोटे होते थे ना, तो कभी हमारी छत के ऊपर जमा होते थे, तो कुछ करने को नहीं होता, तो ऐसी तफरी में कहते थे, एक कजन कहता था तुम दौड़ो हम भागते हैं, नहीं तुम दौड़ो हम भागते हैं, ये हमारा गेम हो जाएगा, ठीक है, यानी इट वॉज फनी बेसिकली। दौड़ने भागने दोनों एक ही चीज होता है ना। तो उसी तरीके से बच्चे भाई भाई ये जो है ना स्क्वायर है, तो इसी स्क्वायर के अंदर जो है ना फिर हम कोशिश करेंगे कि दूसरी टीम, दो टीमें बनानी आपस में, अब वो टीम जो है ना वो अगर स्क्वायर से बाहर निकल गई ना तो वो आउट हो जाएगी, और अगर वो अंदर आ गई तो वो इन होगी, और अगर उसने जो है वो ऐसे कर दिया तो ये फाउल हो जाएगा, और अगर उसने वैसे कर दिया तो ये फाउल नहीं होगा। तो ये गेम जो है वो किसने बनाया, बच्चों ने खड़े खड़े बना लिया, और फिर इस गेम के उसूल किसने बनाए, वही जिन्होंने गेम बनाया उन्होंने उसके उसूल बना लिए। टैग टैग खेलते हैं, कबड्डी कबड्डी, बच्चों को हमने कबड्डी भी खेलते हुए देखा, पता नहीं कबड्डी मुझे तो कभी नहीं आई, लेकिन बच्चों को शायद उन्होंने कहीं सीख ली होगी कबड्डी खेलना, ठीक है। तो जिसने इस गेम बनाया उसी ने इसके उसूल बनाए ना, तो ये पूरी की पूरी कायनात जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबले में ये क्या है, ये एक गेम है, अल्लाह ताला ने ये एक निजाम बनाया और अल्लाह ही ने इसके उसूल बनाए, ठीक है। इसमें कौन सी चीज इंसानों को अच्छी लगेगी, उनकी तबीयतों को अच्छी लगेगी, ठीक है, तो वो अल्लाह ने डिफाइन कर दी। अब इंसान की तबीयत को अल्लाह ताला ने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया कि उसको वो चीज जो है वो अच्छी लगती है, तो इंसान ने अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक उसको पाकीज़ा का नाम दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसी लफ्ज को जो है वो अपने कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल भी कर लिया, तय ये बात, ठीक है ना। और जो चीज अल्लाह ताला ने चाही कि ये गंदी होगी, इंसान की तबीयत में उससे जो है वो नफरत पैदा कर दी, फितरत में नफरत पैदा कर दी, ठीक है ना। तो इंसान ने उसको खबीस कहा अल्लाह ताला ने, वही लफ्ज जो है वो अल्लाह ताला ने तो इंसानों का बड़ा जबरदस्त लिहाज किया। आज तो हम औरतों की क्लास के अंदर सुबह को जो आया आयत पढ़ रहे थे, इंसान को अल्लाह ताला ने क्या जबरदस्त मुकाम दिया है, यानी मानने वाले इंसान, ईमान वालों के अपने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि इनसे इनको बता दीजिए कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का सलाम है, सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। राइट, किसको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? इंसानों को फरमा रहे हैं, और वो इंसान जो नबी भी नहीं है, सिर्फ नबी की उम्मत ही है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के दिल में ये बात डाली, ये खबीस है, फिर अल्लाह ताला ने वही लफ्ज अपने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया। और इसी को सारे जो है ना, वो एक छोटी सी आयत जो कि यहाँ पे नजीब भाई ने लिखी है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास, ठीक है, कि ये अल्लाह की डाली हुई फितरत है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, ठीक है। तो इट्स लाइक बोर्ड गेम या एनी एनी गेम, ठीक है। अल्लाह इज द वन हु डिफाइंस, हु डिसाइड्स व्हाट इज द रूल, व्हाट इज फाउल, व्हाट इज नॉट फाउल, राइट, व्हाट इज फेयर गेम, व्हाट इज नॉट फेयर गेम। तो तबाए सलीमा से यही मुराद है। ये मत समझ लीजिएगा कि दुनिया इंसान कुछ अच्छे इंसान थे तो उन्होंने एक दिन फैसला कर लिया कि जी ये रग़बत वाली बातें हैं और ये फितरत नफरत वाली बातें हैं, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि जिन जानवरों को इस्लाम ने यानी अल्लाह ने हराम करार दिया है, हर जमाने के सलीम उत्तबा इंसान उनको गंदा और काबिल नफरत समझते रहे हैं, जैसे मुर्दार जानवर खून, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने फितरत हर इंसान की बनाई और उस फितरत के अंदर इन चीजों को गंदा तसव्वुर करवा दिया। अलबत्ता बाज औकात जाहिनाना रसूम तबीयत पर गालिब आ जाती है, तबीयत पर गालिब यानी अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर जाहिनाना रसूम गालिब आ जाती है, तो अच्छे और बुरे की तमीज उठ जाती है। कैसे? कि रस्म किस चीज को कहते हैं? रस्म कहते हैं प्रीवेलिंग हैबिट्स ऑफ द सोसाइटी अराउंड यू, ठीक है ना। आपके गिर्द जो मुआशरा है उसके अंदर जो चीज जड़ पकड़ जाए ना, तो उसको रसम कहते हैं, रसूमात, ठीक है। तो जाहिलाना रसूमात किनको कहते हैं? अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कमजोर है ना, आप कमजोर तो मदद के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं। तो आज सुबह जो है वो हम खवातीन में जो है वो सूरह अनआम की आयत नंबर 54 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्हीं वही अभी जो अभी आपके सामने मैंने पढ़ी पढ़ी थी, फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। आप उन लोगों से कह दीजिए जो ईमान लेकर के आए ना हमारी आयात के ऊपर, कि उनके ऊपर सलाम है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत लिख दी है। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सू अम बिजहालतिन, कि अगर तुम में से कोई कोई गुनाह कर देता है जहालत की वजह से, तुम मताबा मिन बाद ही, फिर उसके बाद वो तौबा कर लेता है, वो असलहा और अपने अमल को ठीक कर लेता है, फअन्नहु गफूर रहीम, तो वो गफूर है और रहीम है, वो उसको माफ कर देता है। इस आयत की तफसीर में हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने फरमाया कि खिलाफ हुक्म करना अमली जाहिलियत जहालत, अमली जहालत, ये ईमानी ये अकीदे की जहालत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं, उनकी बात हो रही है। अब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो उसको अमली जहालत का, ठीक है, अकीदे की जहालत नहीं है, ये अमली जहालत है, ठीक है। तो जब आमाल की जहालत पड़ जाती है ना, यानी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना बढ़ जाता है, तो मुआशरे में वो राइज हो जाता है, ठीक है ना। हर बंदा ही करना शुरू हो जाता है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है, वो भी तोड़ रहा है, ये भी तोड़ रही है, वो भी तोड़ रहा है, वो भी तोड़ रही है, तो अब ये रस्म बन जाती है। तो जाहिलाना रसूम जो है ना, फिर इतना असर करती है कि इंसान के अंदर अल्लाह की बनाई हुई फितरत मस्ख हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में फरमाया, जिसका मफहूम है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन फिर उसके माँ बाप उसको युहव्विदानी ही उसको नसरानी बना देते हैं, उसको जो है वो यहूदी बना देते हैं, या उसको मजूसी बना देते हैं, कैसे बना देते हैं, क्योंकि ये सराउंडिंग माहौल होता है बच्चे का, वो उसी को देखता है उसका जो है वो असर ले लेता है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई अल्लाह का हुक्म भी नहीं होता, क्योंकि जब तक ये बालिग नहीं होगा उस वक्त तक इसे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बालिग होने के बाद इसके बाद इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हकीकत खोलेंगे कि क्या हक है क्या हक नहीं है। अब उसके पास इख्तियार होगा कि वो किस लाइन को अडॉप्ट, किसकी बुनियाद पर उसकी जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। लेकिन जब तक वो बालिग नहीं होता अल्लाह ताला उसको फारग रखते हैं हिसाब किताब से। बहरहाल, तो सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे तबीयत पर गालिब आ जाता है। ठीक है, तो अगेन वही बात कि हम अपने बच्चों को ऐसे माहौलों के अंदर भेजते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता, जब गुनाह मुआशरे में आम हो जाए तो फितरतें बस हो जाती है। एग्जैक्टली यही बात है। तो अच्छे और बुरे की तमीज उड़ जाती है, या बास चीजों का खुबस मख्फी हो जाता है। ठीक है, जैसे काफिर मुआशरे के अंदर शराब पीते हैं उसको बिल्कुल बुरा नहीं समझ रहे होते हैं आमतौर पर लोग, उसकी खबासत मख्फी हो गई, छुप गई। ऐसे मामला में भी अलैहिस्सलाम का इस टाइम का नंबर, तो ऐसे मामलात में अम्बिया अलैहिस्सलाम का फैसला सबके लिए हुज्जत है, क्योंकि अफराद इंसानी में सबसे ज्यादा सलीम उत्तबा इंसान अम्बिया अलैहिस्सलाम है, जिनको हक ताला ने मखसूस तौर पर फितरत सलीमा से नवाजा और उनकी तरबियत का खुद तकफुल फरमाया है। ठीक है, यानी खुद अल्लाह ताला ने तकलीफ फरमाई है, यानी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है अल्लाह ताला। तकफुल का मतलब अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि मैं खुद इनकी तरबियत करूं। ठीक है ना, क्योंकि अंबिया से ज्यादा अच्छा कोई इंसान ही नहीं हो सकता, और तरबियत जो है वो सिर्फ कोई बेहतर ही कर सकता है, कोई ऊपर वाला ही कर सकता है। नीचे वाला ऊपर वाले की तरबियत नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आज के दौर में करते हैं, नीचे वाले ऊपर वालों की तरबियत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, दिस इज द रॉन्ग ऑर्डर। नीचे वाला ऊपर वाले की तरबियत नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ने एक तरतीब बनाई है, सबसे ऊपर अपने आप को रखा है, अपने नीचे सिर्फ रसूलों को रखा है, किसी और को नहीं रखा, और रसूलों के नीचे जो है फिर दूसरे इंसानों का रखा है। नीचे वाला ऊपर की तरबियत नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे की तरबियत करता है, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो शागिर्द हो, चाहे वो मुरीद हो, ठीक है ना, चाहे वो किसी और दर्जे का हो। ठीक है, ऊपर वाले की तरबियत नहीं हो सकती। हाँ, मशवरा दे सकते हैं, अल्लाह को तो मशवरा भी खैर नहीं दे सकते, लेकिन मशवरा रसूल को भी दे सकते थे, मशवरा जो है अपने मशाइख को भी दे सकते हैं, मशवरा अपने टीचर को भी दे सकते हैं। मशवरा देने का मतलब तरबियत करना नहीं होता, तरबियत तो ऊपर से नीचे ही आती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम फरमाया, और इसके लिए भी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा के आज सुबह की जो आयात हैं उनके अंदर ये वाला मजमून भी रखा है। माशाल्लाह, सारे मजमून सुबह और शाम के बराबर के ही चल रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत फरमाई सूरह अनआम की आयत नंबर 52 के अंदर, वला तक़रुदु लज़ीना यद'ऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदुन, कि आप नहीं कीजिए, दूर नहीं कीजिए उन लोगों को जो कि अपने रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, उसकी रजा को तलाश। ये क्या है, नहीं करना, रोक टोक करना, मना करना, ये तरबियत का हिस्सा है और तरबियत का बड़ा जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो अल्लाह तरबियत फरमाने अपने नबी की और पूरे कुरान मजीद के अंदर इस तरह से मजामीन जो अल्लाह ताला ने रखे हुए तरबियत फरमाने वाले, तो इनके गिर्दो पेश अपने फरिश्तों का पहरा लगाया जिससे उनके कल्ब व दिमाग और अखलाक किसी गलत माहौल से मुतासर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की तरबियत करनी है। तो भाई, अगर वही अनप्रोटेक्टेड होंगे तो आगे से उन्होंने क्या किसी की तरबियत करनी है। तो उन्होंने जिन चीजों को खबाइस करार दिया वो हकीकतन खबाइस हैं, और जिनको तैयबात समझा वो हकीकतन तैयबात हैं। लेकिन ये भी रसूलों ने अपनी मर्जी से नहीं किया, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से कोई चीज नहीं करते कि मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश है कि ये पाक है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये पाक है। नहीं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सराहतन वही नाजिल फरमाई, चाहे वो तिलावत करने वाली वही हो यानी कुरान, चाहे वो तिलावत ना करने वाली वही हो जैसे हदीस मुबारक, अल्लाह ने उनको वही फरमाई, वो वही के बगैर कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करते थे हलाल हराम। तो सिर्फ ये नहीं कि उनकी तबीयत अच्छी थी, वो यानी फितरत अच्छी थी, जैसे नाउज बिल्ला किसी काफिर की भी फितरत अच्छी हो सकती, उसी तरह नबी की फितरत जो है वो सबसे अच्छी थी, तो इस वजह से उन्होंने हलाल हराम का डिक्लेरेशन कर दी। नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी हवा से, अपनी ख्वाहिश से नहीं करी, अल्लाह के हुक्म से करी। ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास रोकते हैं, क्योंकि क्लास जो है वो मतलब टाइम खत्म हो चुका है। किसी ने क्या, अच्छा क्या लिखा आपने, इन अ वे दिस शोज दैट इवन प्रॉफिट्स नीडेड प्रोटेक्शन ऑफ देयर फितरत फ्रॉम द माहौल। सुभान अल्लाह, अच्छी बात आपने बहुत लिखी। इवन दे नीडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर माहौल, देन हाउ कैन वी थिंक दैट आवर फितरत विल बी प्रोटेक्टेड इन बैड कंपनी। वेरी गुड कंक्लूजन, सबको समझ में आया है कि इनके अल्लाह ताला ने रसूलों की यानी शेख ने अपने मुरीदों की हिफाजत करी नबी अलैहिस्सलाम के। आया एक ख्याल एक दफा कि मैं देखूं तो सही कि कुरैशी शादियां कैसी होती हैं, ठीक है ना, उनकी शादियों में नाच गाना शराब कबाब ये सब कुछ होता था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने एक साथी को कहा कि भाई तुम जो है ना वो जरा ख्याल करना ना काम काम काज का, मैं जाता हूँ देख करके आता हूँ शादी कैसी हुई। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को सुला दिया, नबी अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं देख सके, सो गए। जब शादी वादी खत्म हुई, सारा शामियाना हम सब कुछ खत्म हो गया, अब आंख खुल रही है, कैसे तबीयत कैसे हिफाजत हो पाए, और हम कहते हैं हमें हिफाजत की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता भाई, हम तो बड़े चीते किस्म के लोग हैं और हमारी औलाद तो हमसे बढ़कर के चीता है, कुछ नहीं होता उनको। अल्लाह हमें अकल सलीम अता फरमाए, वरना तो मारे जाएंगे बहुत बुरी तरीके से दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिस तरह अभी पीछे क्लास में बात भी हुई थी और आप लोगों के साथ मैसेज भी शेयर किया था, या तो औलाद रोएगी या हमें रुलाए, बल्कि दोनों ही रोते हैं, कोई एक नहीं रोता, असल में तो दोनों ही रो रहे होते हैं। हजरत हम पाकीजा के बिल मुकाबिल का ना पाकीजा लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? पाकीजा के बिल मुकाबिल ना पाकीजा लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? गांधी और काबिल नफरत गंदी गांधी गंदी और काबिल नफरत इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई किताब में तो गंदी और काबिल नफरत का लफ्ज है, तो आप क्यों क्यों करें ना पाकीजा है, क्योंकि जो पाकीजा होता है वो गंदा नहीं होता, वो काबिल नफरत नहीं होता, ठीक है। और तभी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं टाइम भी असल में खत्म हो गया ना, मैं जल्दी जल्दी रैप अप करना चाह रहा हूँ। लाइक व्हेन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम एंड वॉश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम्स हार्ट विद जमजम, माशाल्लाह, ठीक है। हमारे बहुत ही नौजवान साथी ने ये वाला कॉमेंट लिखा है, ठीक है। तो भाई इसी तरह से मशाइख जो होते हैं हमारे, जो शेख हैं, तो वो हमारी तरबियत का इंतजाम करते हैं, तो हमें मना करते हैं गंदी सोहबत में मत जाओ, बुरी सोहबत में मत जाओ, अपने औलाद को बुरी सोहबत में मत भेजो, ठीक है ना। और हम जो है वो खड़े हो जाते हैं, नहीं आपको क्या पता, आप अपने काम से काम रखें, है ना, माइंड योर ओन बिजनेस हजरत जी, माइंड योर ओन बिजनेस। हम आपको हजरत जी कह तो रहे हैं ना, बस इतना हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है, रेस्ट इज अप टू अस, हम खुद डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता ना, फिर जब भी, तो फिर शेख साहब नाराज हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हमारी शामत आती है, अल्लाह ताला ही नाराज हो जाते हैं। अल्लाह ताला के साथ नबी रसूल ने ऐसे नहीं किया, ठीक है, कि नहीं है मैं ये नहीं, नहीं 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 ये तो शक्के शक्के सदर करने आ रहा, ओ नहीं मैं नहीं करवा था, मुझे बहुत तकलीफ होगी इससे, तो ठीक है ना। तो फिर तो नबी अलैहिस्सलाम के दिल जो है वो पाक नहीं होता, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम तो क्या, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, जैसा कि हम करते करते हैं। अल्लाह ताला बात समझ हमें तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।